फुलवा को कमरे में बंद करने के बाद रूपाली वापस सिनहरी के कमरे में आई। निक और रॉन अभी भी वहीं बैठे हुए थे। रूपाली ने निक का हाथ पकड़कर देखा और कहा, साहब आपकी तो चोट लग गई है, दर्द हो रहा होगा ना? हाँ दर्द तो बहुत हो रहा है, क्या मैं आज रात को जन्नत बाजार में रुक सकता हूँ? निक ने पूछा। रॉन ने कहा, और मुझे भी, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। रूपाली जी और सुनहरी जी, आप आइए ना मेरे साथ, हम लोग कल जन्नत बाजार को बेस्ट सा डेकोरेट करवाएंगे। रॉन रूपाली और सुनहरी को बातों में लगाकर उन्हें जन्नत बाजार के दूसरे हिस्से में ले गया। निक को मौका मिलते ही वो पीछे की खिड़की से उस कमरे में गया जहां उन्होंने फुलवा को बंद किया था। उसने जैसे तैसे वहां के पहलेदारों को, जो वहीं की कुछ लड़कियां थीं, हटाया और अंदर गया। फुलवा उसे देखकर रोते हुए आई और उसके गले लग गई। निक ने उसे सहलाते हुए कहा, बस करो, अब रोना बंद करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, अब फिक्र मत करो, मैं आपको यहां से एक बहुत ही सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, लास्ट टाइम मैंने आपको गलत जगह पर पहुंचा दिया था। फुलवा ने कहा, लेकिन भैया कल ये लोग मुझे भी इस गंदे काम में लगा देंगे, मैं फिर कैसे? मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बस दो दिन रुक जाओ, मुझे पता है अब तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगी। फुलवा ने रोते हुए कहा, लेकिन भैया दीदी को पता चला तो वो यहाँ पर आ जाएगी, मैंने सुना था ये लोग दीदी को मार देंगे, हम दीदी से कैसे छुपाएंगे कि मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ? निक ने कहा, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा कि तुम वापस यहाँ आ गई हो। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी प्रियल बेड के नीचे से निकल कर आई। ओ रियली? प्रियल को वहां देखकर निक और फुलवा की आंखें फटी रह गई, जबकि फुलवा तो और भी ज्यादा हैरान थी जब उसने प्रियल को बोलते हुए सुना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निक ने पूछा। दीदी आप बोल सकती हो? फुलवा ने हैरानी से पूछा। निक ने कहा, अरे ये तो एक मिनट चुप नहीं रह सकती, तुम बोलने की बात करती हो, इसका बस चले तो सारे दिन पटर पटर करती रहे, पता नहीं यहाँ पर दो तीन महीने कैसे चुपचाप रहकर निकाल दिए। फुलवा ने कहा, दीदी एक बार फिर से बोलकर दिखाइए ना। निक ने कहा, नहीं इसे चुप ही रहने दो प्लीज, अगर एक बार इसने बोलना शुरू किया तो ये चुप नहीं होने वाली, और तुम्हें नहीं पता ये मुझे बहुत सारा लेक्चर भी सुनाएगी कि मैंने उसे बताया क्यों नहीं। लेकिन यार तुम पहुंची कैसे यहाँ तक? मैंने तो पूरा इंतजाम किया था तुम यहाँ तक ना पहुंच पाओ, और तुम्हें बताया किसने? और ये कमरा, तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने फुलवा को यहीं रखा है? प्रियल ने कहा, मैंने यहाँ आपसे ज्यादा वक्त बिताया है, मुझे अच्छे से पता होता है कि कौन सी लड़की को कहाँ रखा जाता है, रही बात यहाँ आने की तो मुझे रोकता कौन? आपकी वो चिपकू पड़ोसन जिसकी नज़र हमेशा बाहर ही भरती है, वो एक आम इंसान है, और हम कौन है ये अच्छे से जानते हो आप, मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैं पहले भी यहाँ से बहुत बार बाहर आती जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था, प्रियल ने कहा और पास लगे बट पर बैठ गई। फुलवा ने कहा, दीदी आप बोल भी सकती हो और यहाँ से बाहर भी जाती थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ये बिल्कुल झूठी है, पता नहीं क्या क्या छुपाती रहती है, चलो छोड़ो इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए निक ने प्रियल को तिरछी निगाहों से देखा और कहा, मैं इसे यहाँ से निकाल लूंगा, और फुलवा इसे बोलो ये जहाँ से यहाँ पर आई है वहाँ पर वापस चली जाए। प्रियल ने कहा, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक फुलवा को किसी सुरक्षित जगह ना पहुँचा दूँ, आप तो पहुँचा नहीं पाए, लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। फुलवा ने कहा, भैया आप सच कहते हो, दीदी बहुत बोलती है, तुम मेरी साइड हो या इनके? इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, प्रियल ने आंखें दिखाकर कहा। उन लोगों की बहस सुनकर फुलवा ने हंसते हुए बोला, आप तो बिल्कुल पति पत्नी के जैसे झगड़ा कर रहे हो, भैया आप दीदी से शादी कर लो ना, फिर पूरी जिंदगी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार से झगड़ा करते रहना। निक ने मुंह बनाते हुए कहा, एक ही लड़की से तीसरी बार शादी तो नहीं करने वाला हूँ। आप क्या बोल रहे हो? उसकी बात फुलवा को समझ नहीं आई इसलिए उसने पूछा। प्रियल ने कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो आ जाओ मैं तुम्हें सुलाती हूँ, काफी देर हो गई है। फुलवा ने कहा, आपके बिना मुझे नींद भी नहीं आती थी, अब जब आपकी गोद में सर रखकर सोऊंगी तो मुझे जल्दी ही नींद आ जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। हाँ तुम्हारी इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि इसकी गोद में सिर रखकर सोने से नींद जल्दी आ गई, बोलते हुए निक ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल धीमा किया और आगे कहा, पता नहीं मुझे कब सोने देगी। वहाँ एक छोटा सा सिंगल बेड डाला हुआ था जहाँ मुश्किल से दो लोग सो सकते थे। प्रियल फुलवा को अपनी गोद में सिर रखकर सुलाने लगी। निक उन दोनों को वैसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, कितनी प्यारी बच्ची है और प्रियल के साथ में इतना घुलमिल भी गई है, पता नहीं इस मासूम को यहाँ पर किसने पहुँचाया होगा, एक बार इसे यहाँ से निकाल दूँ फिर एक एक बात का हिसाब लूंगा इन दोनों से, बस बहुत हो गया इन दोनों का, बेचारी बच्ची की जान लेने पर तुली थी, दोनों साथ में कितने खुश हैं, निक ने सोचा। प्रियल फुलवा के बालों में धीरे धीरे हाथ फेर रही थी कि तभी उसकी नज़र निक पर गई जो कि उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। निक ने इशारों में कहा, मैं भी आ जाऊँ? प्रियल ने अपनी पलकें झुकाकर हामी भरी। निक प्रियल की गोद में दूसरे साइड अपना सिर रखकर लेट गया। फुलवा ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना दीदी आपको मना नहीं करेंगी। हाँ पहले तो नहीं करती थी लेकिन अब तो जब देखो मारने को पीछे भागती रहती है, पता नहीं क्या हो गया है इसे, निक ने धीमे बोलकर जवाब दिया। प्रियल ने कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है, आप दोनों सो रहे हो या नहीं? अब तो मेरे पैर भी दर्द करने लग गए हैं और तुम दोनों की बात ही खत्म नहीं हो रही। निक और फुलवा दोनों एक साथ बोले, हाँ सो रहे हैं। जल्द ही निक और फुलवा को नींद आ गई तो प्रियल उन दोनों को सोते हुए देख रही थी। प्रियल ने कहा, सोते हुए दोनों किसी मासूम बच्चे जैसे लग रहे हैं। कितना बोलने लगे आजकल ये, बस जब देखो पटर पटर चालू रहती है। प्रियल ने फुलवा के माथे पर किस किया, तभी उसकी नजर निक पर गई। उसने निक के गाल पर भी हल्के से किस किया, तभी प्रियल की नजर निक के हाथ पर गई। दोस्त पर चाबुक से लगी चोट का निशान था। प्रियल ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से सहलाया। प्रियल का हाथ चोट पर लगने से निक को दर्द हुआ और वो नींद में भी कराह उठा। प्रियल निक के हाथ पर लगी चोट देखकर समझ गई कि जरूर ये सुनहरी है रूपाली में से किसी ने किया होगा। प्रियल ने कहा, क्यों आपके दिल के इमोशंस हमेशा आपके प्रोफेशन पर हावी हो जाते हैं निक? आप बहुत अच्छे हो, तभी शायद लोग आपका फायदा उठाते हैं। काश उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो हम दोनों आज भी साथ होते। हमने हमारी जिंदगी के 5 साल एक दूसरे से दूर रहकर बिता दिए। आप नहीं जानते मैंने आपको कितना मिस किया। मैं तो आपसे तब से प्यार करती हूँ जब आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। सोचिए मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा आपके बिना 5 साल बिताने। मैंने कभी आपके बिना जीना सीखा ही नहीं था, लेकिन इन 5 सालों ने बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं चाहकर भी अब आपके पास वापस नहीं आ सकती। अब तो बस जल्दी से जल्दी ये मिशन खत्म हो जाए और आप वापस USA चले जाओ और मैं अपने घर। हमारी लाइफ वापस पहले जैसी हो जाएगी, बस एक दूसरे के लिए तड़पना और कभी एक ना हो पाना। बोलते बोलते प्रियल की आंखों में आंसू आने लगे और आंसुओं की बूंद निक की आंख पर गिरी तो वो जाग गया।
निक ने हल्के से आंखें मलते हुए कहा, अब क्या हुआ? इतने दिन तक तो बड़ा स्ट्रांग बनकर रहती थी, अब तो फिर से रोतलू हो गई हो। बोलते हुए वो बैठ गया और आगे कहा, गुड़िया मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं फुलवा को डैड के पास USA भेज दूंगा। तुम भी जानती हो वहां से सुरक्षित जगह उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। प्रियल ने कहा, USA जादू से भेजोगे? ना इसका पासपोर्ट है और ना ही कोई लीगल ID। मुझे बस 2 दिन का टाइम दो, मैं सारी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। ये 2 दिन ही तो नहीं है हमारे पास, मुझे बस इसी बात का डर सताया जा रहा है कि कहीं इन 2 दिनों में ये लोग फुलवा को जन्नत बाजार में ना उतार दें। निक ने पूछा, जन्नत बाजार में उतारने का मतलब? प्रियल ने कहा, मतलब उसे भी बाकी लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति में ना धकेल दें। डोंट वरी, मैंने सब प्लान कर लिया है। कल सुबह सुनहरी और रूपाली फुलवा को बेचने का प्लान कर रही हैं। तो उसकी बात सुनकर प्रियल ने चौंकते हुए कहा, और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? कल इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी निक, आप समझते नहीं हो अभी इन लोगों को। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे निक? अगर कल के कल उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया है तो वो दोनों ये करके रहेंगी, आप नहीं जानते उसके बाद क्या होगा, प्रियल ने गुस्से में जवाब दिया। अरे सुनो तो सही, वो लोग कल जब फुलवा को यहाँ से बेचकर बाहर भेजेंगी तब हम उसे रास्ते में ही वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। तुम कहोगी तो हम इसे अपने घर पर लेकर चलेंगे। प्रियल ने कहा, आपको कुछ नहीं पता निक। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। ये लोग फुलवा को जन्नत बाजार से बाहर नहीं भेजेंगे, उससे पहले ही यहाँ इसके साथ। क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपसे कहा तो था कि जन्नत बाजार के सारे राज आप नहीं जानते हो। अभी भी बहुत सी बात और चीज़ है जो आपसे छुपाई गई है। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आपने कदम रखना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये क्या कर दिया आपने? चलो हम अभी फुलवा को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। प्रियल तुम तो यहाँ के सीक्रेट दरवाजे जानती हो ना, वहीं से हम फुलवा को ले जाएंगे। बोलते हुए निक ने प्रियल का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। अगर ये इतना आसान होता तो अब तक मैं सारी लड़कियों को उन दरवाजों से भगा चुकी होती। हमारी एक बेवकूफ़ी पूरा मिशन बर्बाद कर सकती है। मुझे तो कल का सोचकर भी डर लगा है कि फुलवा के साथ क्या होगा। मैंने कुछ सोचा है। ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब हैंडल कर लूँगा तो कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिस दरवाजे से यहाँ पर आई हो चुपचाप वहीं से वापस घर चली जाओ। निक ने गुस्से में जवाब दिया। कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि वो क्या करने की सोच रही है। प्रियल ने कहा, मेरा सामने आना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर मैं सामने आई तो ये लोग फुलवा को छोड़ देंगे। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं फुलवा पर आज भी नहीं आने दूंगा। फिर तुम क्यों से रोए जा रही हो? मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। मैं संभाल लूंगी, लेकिन ये कैसे? ये बच्ची है। एक बात पूछूं प्रियल, सच सच जवाब देना, क्या इन्होंने कभी तुम्हारे साथ भी ज़बरदस्ती किसी के साथ जाने को मजबूर किया? निक ने हिचकिचाते हुए बोला। प्रियल को आभास हो गया कि निक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़ी, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, निक ने जवाब देते हुए कहा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कुछ हुआ है या ना हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें प्यार। बोलते हुए निक की आंख नम हो गई और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसे दर्द में देखकर प्रियल को बहुत बुरा लग रहा था।